चौथा स्कंद सत्रहवां अध्याय महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। श्लोक संख्या 26। अन पुरुष योषित स्त्री उत भी क्लीबह नपुंसक आत्मसंभावनः अपने ही पोषण ही रुचि रखने वाला अधमः नीच भूतेषु अन्य जीवात्माओं को निरनुक्रोशः बिना दया के निर्दय नृपाणाम राजाओं के लिए तत् उसका वधः वध करना मारना अवधः न मारने से समान। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति चाहे वह पुरुष स्त्री या नपुंसक हो जो आत्म पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता राजा द्वारा वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। तात्पर्य पृथ्वी बनावट में स्त्री के तुल्य है, अतः उसे राजा के संरक्षण की आवश्यकता होती है, किंतु पृथु महाराज तर्क करते हैं कि उनके राज्य का कोई नागरिक चाहे वह पुरुष हो स्त्री अथवा नपुंसक यदि अपने संगी पर दयालु नहीं है तो राजा उसका वध कर सकता है और इसकी गणना वास्तविक वध में नहीं की जाती। जहां तक आध्यात्मिक कार्यों की बात है, जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो वह प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है और उन दीन दुखियों पर दया रखता है जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रह्लाद महाराज ने कहा था कि वह इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं है, अपितु जब तक समस्त पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता वे उस स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहते। भौतिक क्षेत्र में भी यदि कोई व्यक्ति दूसरों का कल्याण नहीं चाहता तो श्री भगवान या पृथु महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। अनुवाद द्वारा पृथु महाराज पृथ्वी माता को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम वध किए जाने के लिए योग्य व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अर्थात इस पृथ्वी के ऊपर जो प्रजा है उनके ऊपर तुमने दया नहीं दिखाई। दया की बात तो दूर है, तुम क्रूर थे, क्योंकि हालांकि प्रजा पाप नहीं कर रही थी और तुम्हारा कर्तव्य ऐसे अवस्था में उनके लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज इत्यादि प्रदान करने का कर्तव्य था, फिर भी तुमने नहीं किया और तुम्हारी क्रूरता की वजह से प्रजा को कितना दुख पहुंचा है। तो क्योंकि तुम ऐसे दयालु नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारा वध करने वाला हूं। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने निजी पालन पोषण के लिए बहुत आतुर रहता है, चेष्टा करता है, लेकिन दूसरों के उद्धार के लिए दूसरों के भलाई के लिए कार्य नहीं करता, दूसरों के ऊपर दया नहीं दिखाता, तो वो वास्तव में राजा द्वारा मारे जाने योग्य है। अगर इस सिद्धांत के ऊपर हम सारे जगत को देखें, इस आधार पर लोगों की विश्लेषण करें, तो ऐसा लगता है कि शायद 99% लोग संसार में मारे जाने चाहिए। शायद ही ऐसे व्यक्ति हैं संसार में जो दूसरों के लिए जीते हैं। सभी लोग अपने लिए ही जीते हैं। मुझे मेरा संसार बनाना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे बड़ा से बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़े से बड़े गाड़ियां चाहिए, अच्छे अच्छे सामग्री चाहिए घर में, मुझे नाम चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सब चीजें मुझे चाहिए। ये चीजें, तीन चीजें हैं, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। लाभ मतलब हम हर तरह का भौतिक लाभ चाहते हैं, धन कमाकर ज्यादा ऐश्वर्यशाली धनवान बनना चाहते हैं। प्रतिष्ठा मतलब हम चाहते हैं कि समाज में हमारा नाम हो, कितना धनी व्यक्ति है, कितना सुंदर है, कितना दानवान है, दान कितना देता है। और पूजा, हम चाहते हैं कि लोग हमारे सामने आके सर झुकाएं, हमारे पैर छुएं, हमारा गुणगान हो। तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये तीन चीजों जो हैं, ये वास्तव में इंसान को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करने देते हैं, इसको वापस खींच के ले आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि ये तीन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, एक पानी के बूंद के बराबर है और ये संसार एक मरुभूमि या रेगिस्तान के बराबर है, डेजर्ट। जब आदमी रेगिस्तान में होता है और प्यासा भूखा होता है और उसको आप एक बूंद पानी पिलाओ, तो उस एक बूंद से क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? उसको तो कोई झरना चाहिए, कोई नदी चाहिए जहां से वो अपने आप को तृप्त कर सके, प्यास को बुझा सके। लेकिन एक बूंद पानी से बल्कि उसको कष्ट ही होगा। ठीक उसी तरह से इस संसार में अगर वास्तव में हमें सुख चाहिए तो हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सारे धर्मों में से सर्वश्रेष्ठ धर्म वो है जिसका करने से भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की भावना जागृत हो जाएगी। और ऐसी भक्ति या सेवा बिना कोई हेतु के होना चाहिए और बिना कोई रुकावट के होना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता। और ऐसे भक्ति या सेवा से ही हम आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा की संतुष्टि केवल भगवान की सेवा से हो सकती है। और जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी तब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हम ही आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। लोग संसार में अज्ञान की वजह से केवल शरीर को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। क्योंकि शरीर को जितना भी आप तृप्त करो उतना ज्यादा शरीर मांगेगा। इंद्रियों की पुकार बहुत तीव्र होती है और इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, कोई अंत नहीं होता। जिस तरह से अग्नि में अगर हम घी डालते जाएंगे और सोचेंगे कि घी अग्नि बुझ जाएगी, क्या ये होगा? जितना घी हम अग्नि में डालेंगे, बुझने के बजाय उल्टी जो अग्नि है वो और भी प्रज्वलित रूप में जलने लगेगी। उसी तरह से जितना हम शरीर को आनंद देने का प्रयास करते हैं, इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी इंद्रियां हमें तंग करेंगी, हैरान करेंगी और उस हद तक हम असंतुष्ट हो जाएंगे। और ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये तो सूक्ष्म रूप की इंद्रिय तृप्ति है। जब आदमी की शारीरिक आवश्यकताएं थोड़ी बहुत पूरी हो जाती हैं तो सूक्ष्म रूप से इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है कि लोग मेरा गुणगान करें, मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरा नाम अखबार में आए, मेरा फोटो छप जाए। तो ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा भी प्राप्त करने के बाद में हम तृप्त नहीं हो सकते, फिर भी हम असंतुष्ट होते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि समाज में जो तथा कथित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनका निजी जीवन अगर जाके देखेंगे तो ये हम देख पाएंगे कि वो कितने दुखी हैं। हमारे दृष्टिकोण से लग रहा हो कि वास्तव में ये लोग कितने सुखी हैं, कितने शांति से जी रहे हैं, कितना धन इनके पास है, इनका फोटो अखबार में छपता है, कितने सुखी होंगे ये लोग। लेकिन वास्तव में जब गहराई में परीक्षा इस बात की करेंगे तो ये प्रतीत होगा कि ये तो सबसे ज्यादा दुखी है। तो इस तरह से ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि की बातें, जो व्यक्ति इनमें चले जाता है तो केवल वो अपने ही स्वार्थ के लिए, आत्मपोषण के लिए वो कार्य करने लगता है। और जिस हद तक व्यक्ति को पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा है, उस हद तक वो दूसरों के ऊपर दया नहीं दिखा सकता। कौन दया दिखा सकता है दूसरों के ऊपर? जिसका स्वार्थ नहीं है, जो दूसरों का हित चाहता है, वही एकमात्र ऐसा कर सकता है। जिसके हृदय में स्वार्थ भरा हुआ है तो उसके हृदय में दूसरों के लिए जगह, दया की जगह ही कहां है? जगह बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहां बताया जाता है कि दया की भावना मनुष्य जीवन का धर्म होता है। जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है वो खुद ब खुद दयालु बन जाता है। उसको अलग से प्रयास करने के लिए नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं अभी तितिक्षवान हो जाऊंगा और थोड़ी देर बाद में अगला मेरा प्रोजेक्ट होगा कि मैं दयालु बनूंगा, ये प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं सहनशील बनूंगा, फिर और कुछ बनूंगा। नहीं, भगवान की भक्ति करने मात्र से ही सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणाः। कपिल देव श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि साधु के लक्षण क्या होते हैं। साधु वो होता है जिसका चरित्र ऐसे गुणों से अलंकृत है जो कि दिव्य गुण कहलाते हैं। हमारा वास्तविक सौंदर्य जो होता है वो शरीर का सौंदर्य नहीं होता। हमने कितने अच्छे कपड़े पहने, कितना अच्छा हेयर स्टाइल है, कितने हमने परफ्यूम लगाए और कितने अच्छे गहने पहने हैं, कितने अच्छे नए नए फैशन के जूते पहने हैं, ये शरीर का, ये सच्चा सौंदर्य नहीं होता। सच्चा सौंदर्य होता है हमारे चरित्र का सौंदर्य। जिस व्यक्ति का चरित्र दिव्य गुणों से सुशोभित और अलंकृत होता है वही व्यक्ति वास्तव में भगवान की दृष्टि से सुंदर कहलाता है। भले वो शारीरिक दृष्टि से कितना भी कुरूप क्यों ना हो, लंगड़ा गूंगा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर ऐसे दिव्य गुण हो तो भगवान भी ऐसे व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को साधु कहते हैं, साधु भूषणाः। और उसके क्या गुण होते हैं? सबसे पहले तितिक्षवाः, उसको तितिक्ष होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। जब तक व्यक्ति सहनशील नहीं होता वो दूसरों के ऊपर दया नहीं दिखा सकता। क्योंकि संसार का नियम ऐसा है कि जिन लोगों के ऊपर आप दया दिखाने जाओगे वही लोग आपका विरोध करेंगे, वही लोग आपको नीचे करने का प्रयास करेंगे। ये संसार का नियम है। जिस तरह से जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप जाओ और गांव गांव में आप हरि नाम का प्रचार करो, लोग इस दावा नल में, संसार के दावा नल में जल रहे हैं, तड़प रहे हैं दुख के मारे, इसलिए उनको जाके हरि नाम दो जो कि असली औषध है, जिसका पान करने से उनको वास्तविक आनंद मिल जाएगा। तो उनका कोई स्वार्थ नहीं था, केवल दूसरों की भलाई चाहते थे। लेकिन जब वो गए जगाई मधाई के पास, जगाई मधाई तो बिल्कुल उन्मत्त थे, नशे के अवस्था में थे, शराब पिया हुआ था और उनके हाथों में शराब के मटके थे, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये लोग हमारे ऊपर दया कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये लोग आके हमारे जीवन में उपद्रव कर रहे हैं, हमको हमारे सुख को प्राप्त करने की चेष्टा में रुकावट डाल रहे हैं, हमें आके खामखा डिस्टर्ब कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान का नाम लो। तो मधाई ने वो मटका उठाकर नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो बड़े क्रोधित होकर आए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपका अवतार जो है वो कृपा प्रदान करने के लिए, आप इनको मारिए नहीं, इनको शरीर को मत मारिए, इनके हृदय में जो असुर हैं उसको मारिए। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु कितने सहनशील थे। अपने आप के ऊपर आक्रमण हुआ फिर भी वो जानते थे कि ये अज्ञानी है और इसलिए ये नहीं जानता कि मैं जो उसको देने आया हूं ये मेरे ये दया है, भगवान की कृपा है, समझ में नहीं आया उनको और इसलिए उल्टा उसके ऊपर ही आक्रमण किया। तो संसार की यही अवस्था होती है। जब लोग हरि नाम का संकीर्तन करते हुए सड़क में जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग निंदा करते हैं, और दूसरे देशों में तो यहां तक कि शरीर के ऊपर भी आक्रमण करते हैं और कभी कभी भक्तों को गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं, नाना प्रकार से हैरान करते हैं लोगों को। लोग अज्ञान की वजह से ये नहीं समझते कि वो उनका परम कल्याण करने के लिए जगत जग भर में घूम रहे हैं और वो हरि नाम का संकीर्तन दे रहे हैं, वो ये उनकी कृपा है। इस तरह से भक्त को बहुत ही सहनशील होना आवश्यक है। दूसरा, तितिक्षवः कारुणिकाः। कारुणिकाः मतलब जो करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, इसलिए करुणा के पहले तितिक्षवान। जब इसके पहले कि कोई दयावान हो उसे सहनशील होना चाहिए, तो पहले तितिक्षवान फिर कारुणिकाः। कारुणिकाः मतलब जो करुणा दिखाते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनाम। सर्वदेहिनाम मतलब सारे प्राणियों का सुहृद। सुहृद मतलब शुभ चिंतक। जो शुभ चिंतक होता है वो हर एक व्यक्ति का भलाई चाहता है। तो जो वास्तव में साधु होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे प्राणियों के शुभ चिंतक होते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि केवल मैं मेरे परिवार का देखभाल करूंगा, मैं परिवार का शुभ चिंतक रहूंगा, मेरे पत्नी पति बच्चे माता पिता यही मेरा कुटुंब है और इनका मैं शुभ चिंतक रहूंगा, इनके लिए मैं कार्य करूंगा। नहीं, उसकी दृष्टि और भी ज्यादा उदार होती है। और कितनी उदार? नहीं, मेरे केवल समाज की मैं चेष्टा करूंगा, मेरे जाति के जो लोग हैं इनके बारे में मैं चेष्टा करूंगा, उनका इनकी सेवा करूंगा। नहीं, और भी उदार होना चाहिए। केवल मेरे देशवासियों की सेवा करूंगा? नहीं। केवल मैं मनुष्य जाति की सेवा करूंगा? नहीं, इससे भी ज्यादा उदार। साधु कौन होते हैं? सुहृद सर्वदेहिनाम, सारे प्राणियों के प्रति, यहां तक कि चींटी मच्छर कीड़े शेर बंदर सबके प्रति शुभ चिंतक होना, ये साधु के गुण होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने सारे ब्रह्मांड को विश्व को अपना परिवार समझता है वो वास्तव में साधु कहलाता है। इसलिए साधु की कोई भौतिक पहचान नहीं होती कि ये इस जात का है उस जात का है, इस देश का है उस देश का है, नहीं। अयम निजह परो वेत्ति गणना लघु चेतसा, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। हितोपदेश के इस महत्वपूर्ण श्लोक में बताया जाता है कि जो लोग सोचते हैं अयम निजह, ये मेरा है और वो उसका है, जो मेरे में और दूसरे में जो भेदभाव करते हैं, फर्क बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लघु चेतसाम। चेतसाम मतलब चित्त, बुद्धि, हृदय, और लघु मतलब छोटा। मतलब जो व्यक्ति केवल मेरा और उसका इसके बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, बहुत छोटे दिल वाले होते हैं। लेकिन उदार चरितानाम, जिनका चित्त उदार होता है वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। सारी पृथ्वी सारा विश्व मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है। वसुधा पृथ्वी के लिए और एक नाम है। हम पृथ्वी माता के लिए बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। माता पृथ्वी के लिए कई नाम है, वसुंधरा, धरा, वसुधा। तो इधर वसुधैव, वसुधैव सारा वसुध, सारी पृथ्वी एक कुटुंब हमारा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मेरे पति पत्नी बच्चों के लिए मैं काम करूंगा और दूसरे चाहे खाएं पिए मरे क्या कुछ हो जाए उनके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, ऐसा नहीं। जो साधु होते हैं वास्तव में सारे प्राणियों के शुभ चिंतक होते हैं, इसलिए वो साधु कहलाते हैं। साधवः साधु भूषणाः। इस तरह से सबको साधु बनना चाहिए। लेकिन साधु बनने का मतलब ये नहीं कि सबको गहरे वस्त्र पहनने चाहिए, सबको सर मुंडवा लेना चाहिए, साधु मतलब वो व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण होते हैं। साधु गुणों से पहचाना जाता है, केवल वस्त्रों से नहीं। मनुष्य जीवन में केवल हम बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन भगवान हृदय को देखते हैं। भगवान की दृष्टि अंदर की होती है, मनुष्य की दृष्टि बाहर की होती है। इसलिए केवल अगर हम भगवान की भक्ति करें तो खुद ब खुद हमारे अंदर ये सारे दया वगैरह की भावनाएं आ जाएंगी। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुराः, हराव अभक्तस्य कुतो महत्गुण मनोरथे नासति धावतो बही। बताया जाता है कि जो व्यक्ति यस्यास्ति, यस्य अस्ति, यस्य मतलब जो व्यक्ति करता है, क्या करता है, भगवती भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति करता है अकिंचन, बिना कोई दूसरे विचारों के, बिना कोई स्वार्थ के, जो भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुराः। सुर और असुर दो प्रकार के लोग होते हैं। सुर मतलब देवता और असुर मतलब जो केवल भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं। जो जो व्यक्ति भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, उसके अंदर स्वाभाविक तौर से खुद ब खुद वो सारे अच्छे गुण आ जाते हैं जो कि देवी देवताओं में होते हैं, केवल भगवान की भक्ति करने से। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, हराव अभक्तस्य, हरि का अभक्त है अर्थात नहीं करता हरि की भक्ति, कुतो महत गुण, उसके अंदर कौन से अच्छे गुण हो सकते हैं, क्योंकि मनोरथे नासति धावतो बही, वो अपने मन के रथ पे सवार होकर इधर उधर भाग रहा है, सारे संसार में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की प्राप्ति में घूम फिर रहा है। तो इस तरह से भगवान की भक्ति करना ये सारे प्राणियों के लिए, सारे मनुष्यों के लिए खास करके अनिवार्य बताया जाता है शास्त्रों में। और इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं इतने करुणामय होते हैं कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं कि इतनी करुणा भी अच्छी नहीं है। लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण जो मन में आ रहा है वो वासुदेव दत्त का। वासुदेव दत्त वास्तव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, भगवान श्री कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे और करुणा के प्रतीक, करुणा के मूर्तिमान स्वरूप। एक बार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि मैं यहां सारे संसार की दशा देख रहा हूं, लोग इतने पापी बन रहे हैं, इतने भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, किसी को भक्ति में रुचि नहीं, सभी लोग दुख से पीड़ित हैं और इतना पीड़ित होते हुए भी भगवान की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे चल के इनका क्या होगा, नरक में ही जाने वाले हैं, वैसे भी नरक भरा हुआ है और ये लोग भरते जाएंगे नरक को, अब इनका क्या होगा, मुझे कोई दिशा, कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है इनके उद्धार के लिए, और दुखी होते हुए भी ये अपने आप को सुखी समझते हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया है और आपसे निवेदन है कि इस इच्छा की पूर्ति आप कृपा करके करें। मेरी इच्छा ये है कि सारे ब्रह्मांड के लोग जो कि पाप कर रहे हैं, उनका जो भी पाप है मैं मेरे सर पे लेना चाहता हूं, और इस पाप को मेरे सर पे लेने के बाद में मैं सदा नरक में रहने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन इनका पाप जब मेरे सर पे आ जाएगा तो ये मुक्त हो जाएंगे, इसलिए इनको आप अपने धाम में ले जाओ, इनको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराकर आप निजी आपका संग दे दो इनको, और आपके साथ में ले जाकर आपके धाम में उनको नित्य शाश्वत सुखी जीवन दीजिए, लेकिन इनका पाप मेरे सर पे लेकर मैं सदा नरक में रहूंगा। अगर मेरे नरक में सदा रहने से ब्रह्मांड के सारे जीवों का उद्धार हो सकता है तो फिर मैं यहां रहकर सुखी अवस्था में रहूं, यह कैसे संभव है, ये ठीक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब यह सुना तो उन्होंने वसुदेव दत्त का आलिंगन कर दिया और कहा कि वास्तव में तुम जैसे अगर यहां लोग रहेंगे तो मुझे दूसरों के, तुम्हें नरक भेजने की क्या आवश्यकता है, यह समझ लो कि पहले से ही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैंने कर ही दी। सारे ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार तो मैं कर ही दूंगा, साथ साथ तुम्हें भी मेरे धाम में ले जाऊंगा, तुम्हें नरक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान अपने भक्त की इच्छा के प्रति इतने इच्छा की पूर्ति के लिए इतने आतुर होते हैं कि इस तरह की इच्छा को भी भगवान पूरी कर देते हैं। और वास्तव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उस समय सारे ब्रह्मांड के जीवों को मुक्त करा दिया। जो भी जीव उस समय थे सारे ब्रह्मांड में, स्वर्ग लोक से लेकर नरक लोक तक, पाताल लोक तक, सभी को मुक्त करा दिया। तो इस तरह से, लेकिन बाद में उन्होंने कहा वासुदेव दत्त को, अरे वासुदेव सुनो, मैंने तो कर दिया है, तुम्हारी जो हृदय की इच्छा थी मैंने तो कर दी, लेकिन ये जान लो कि ये एक ब्रह्मांड केवल एक रुई के बीज के बराबर है और अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक गोनी है, बहुत बड़ी थैली है जिसमें रुई के बीज पड़े हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में रुई के बीज हैं। उनमें से एक बीज रुई की निकाल कर अगर बाहर फेंक दें तो उस रुई के बीज का थैले या जो गुना है कितना कम हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इनमें से ये एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें हम और आप रहते हैं, और इसके सारे जीवों को हमने मुक्त कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। इतने और अनंत कोटि ब्रह्मांड पड़े हैं जिसमें इतने करोड़ों करोड़ों अनगिनत पापी जीव पड़े हैं, तो उनका भी तो उद्धार होना है। लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो मैंने इस ब्रह्मांड के जीवों को का उद्धार कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वास्तव में वासुदेव दत्त के हृदय में करुणा की भावना थी, कोई नाटक नहीं कर रहे थे, वो वास्तव में करुणा की भावना थी। और एक बार ऐसे ही हुआ कि उनके बालों में वो लाइस, लाइस को क्या कहते हैं जो हमेशा बाल में फिर वो निकालते रहते हैं, बाल से वो जीव होते हैं ना, बाल में रहते हैं वो बंदर लोग हमेशा निकालते रहते हैं एक दूसरे के, लाइस हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जुए, जुए जुए। तो जुए वगैरह सब थे बाल में, तो जब भी वो गिरते थे तो खुद उठाकर वापस डाल देते थे। कहते थे कि इनको भी आश्रय लेने का इतना ही अधिकार है जितना कि मुझे, मैं भी तो पृथ्वी माता के ऊपर आश्रय ले रहा हूं, घर में आश्रय ले रहा हूं, वो उसका धर्म कर रहा है, उसका धर्म है कि यहां मेरे बालों में आश्रय लेना, तो अगर मैं उसको निकाल के फेंक दूं तो फिर वो मर जाएगा, उसको खाने के लिए क्या है, पीने के लिए क्या है, रहेगा कहां पर। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी बाल बढ़ाने चाहिए और हमें भी ऐसे जुए उगने के लिए उनको चांस देना चाहिए, लेकिन इसकी नकल नहीं कर सकते, ऐसे शुद्ध भक्तों का नकल नहीं करना चाहिए। लेकिन कहने के बाद जो करुणा की भावना है वो कैसी है और सहनशील कैसे होना चाहिए, इसके बारे में और भी एक कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण नदी में अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और गायत्री मंत्रों का उच्चारण करके फिर गंगा जी का जल गंगा जी को अर्पण कर रहे थे और सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे। जो पानी उन्होंने अपने हाथ के तलवों में लिया तो वहां पे एक स्कॉर्पियन को क्या कहते हैं, बिच्छू, एक बिच्छू हाथ में आ गया क्यों, जो कि पानी में था, तो बिच्छू ने हाथ को काट डाला। तो जैसे ही काट डाला तो तुरंत हाथ से छूट गया बिच्छू, क्योंकि ब्राह्मण को लगा और छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जैसे ही छोड़ दिया उन्होंने फिर से उठाया उस बिच्छू को, और जैसे उठाया फिर से बिच्छू ने काट दिया। दूसरी बार बिच्छू गिर गया, तीसरी बार उसको उठाया, फिर से बिच्छू ने काट दिया, फिर से हाथ से गिर गया। तो उस ब्राह्मण के पास में और कोई खड़ा था, कह रहे थे कि अरे ब्राह्मण आपको ये बार बार काट रहा है फिर भी आप उठाते जा रहे हो उसको, ये तो मूर्खता की बात है। तो ब्राह्मण ने कहा जो बिच्छू है वो अपने धर्म से मजबूर है, बद्ध है, वो अपना धर्म कर रहा है। बिच्छू का धर्म है काटना, तो वो अपना धर्म कर रहा है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है, निसर्ग ने, प्रकृति ने उसको ये एक प्रवृत्ति दी है कि वो काटे, काटने के बजाय और कुछ जानता नहीं है वो, तो वो अपना धर्म कर रहा है। लेकिन मेरा धर्म क्या है, करुणा दिखाना, सहनशील होना, तो मैं अपने धर्म करने में मजबूर हूं, तो इसलिए मैं अपना धर्म कर रहा हूं कि मुझे आश्रय देना चाहिए हर प्राणी को, मैं फेंक दूं तो वो मर जाएगा, तो इसलिए मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं भले मुझे कुछ कष्ट हो इसमें। तो इस तरह से ये साधु होते हैं, साधु की भावना ऐसी होती है जो कि अपने आप के ऊपर कष्ट लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सारे समाज के लिए, भलाई के लिए वो कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी दया की भावना केवल भगवान की भक्ति करने से आ सकती है, इसको कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता। वास्तव में मूल दया आत्मा के लिए है। जो केवल शरीर के ऊपर दया दिखाता है वो सही तरह की दया नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति आए और कहे कि मैं सिगरेट पीता हूं, मेरे पास सिगरेट के लिए पैसे नहीं है, तो कोई दया दिखा, मैं दया दिखा, बेचारा तड़प रहा है, सिगरेट नहीं है, तो मैं उसको पैसे दे देता हूं, दया करता हूं उसके ऊपर ताकि वो सिगरेट पी ले और अपनी इच्छा को तृप्त करे, तो क्या ये दया अच्छी है कि नहीं है? ये दया नहीं है, ये तो उसके ऊपर क्रूरता है। हम अज्ञान की वजह से सोचते हैं कि ये दया है और वो अज्ञान की वजह से उस कार्य को करता है, तो दोनों अज्ञानी हैं। इसलिए मैं ये तथाकथित दया जो उसको ऊपर दिखा रहा हूं उसकी वजह से उसको तो पाप लगेगा ही, साथ साथ क्योंकि मैंने उसको पाप करने में मदद किया है मैं भी उस पाप का भागीदार बन जाऊंगा। इस तरह से दया क्या चीज है हमें जानना चाहिए। हमें दया लोगों के ऊपर ऐसे दिखानी चाहिए जिससे कि वो भगवान के करीब, भगवान के नजदीक आ सकें। ये वास्तविक दया है। केवल ऐसी दया नहीं कि हम उसके शरीर का मदद करें और फिर भूल जाएं। वास्तविक दया आत्मा के स्तर पे होनी चाहिए जिससे कि वो अपने स्वभाव को समझे, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये आभास उसको दिलाने के लिए जो भी हम करें वो दया है। चाहे हम उनको दार्शनिक रूप से समझाने का प्रयास करें, चाहे हम उनको और किसी भी तरह से भगवान की भक्ति में प्रेरणा देने के लिए प्रयास करें, वो दया है। और इसके अलावा जो भी कुछ है वो क्रूरता है। तो देखिए दया की परिभाषा क्या है। दया मतलब वो चीज जिसका करने से व्यक्ति को भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो जाए, या कम से कम वो प्रयास जो होता है वो दया कहलाता है। इसके अलावा जो भी कुछ है वो दया नहीं बल्कि क्रूरता है, क्योंकि ऐसे कार्य से हम उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध कर रखना चाहते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि इतने सारे गरीब विद्यार्थी हैं, हम उनको फ्री नोटबुक बांटेंगे, अरे उनको ज्यादा विद्वान बनाओगे भौतिक क्षेत्र में तो फिर कौन, उनको जन्म लेकर आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेकर आना पड़ेगा उनको। अगर उनको हम, कोई बीमार है उसको मुफ्त में दवाइयां देंगे, फिर से उसको आके जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका ऋण है, उसके प्रति आपने ऋण दिया है कि आपने उनको फ्री नोटबुक दिया, फ्री दवाइयां दी हैं, तो उस ऋण को चुकाने के लिए उसको फिर से आना पड़ेगा अगले जन्म में। तो इस तरह से जो भौतिक क्षेत्र के स्तर के ऊपर हम मदद करते हैं लोगों की, भगवान की भक्ति न देखते हुए, तो वो उसको केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के रखता है। लेकिन जब हम उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं, हरि नाम के उच्चारण के प्रति उनको प्रेरणा देते हैं, भगवान की सेवा न किसी तरह से लगा देते हैं उनको, तो ये दया कहलाती है। तो दया का मूल रूप क्या है? येन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। किसी न किसी तरह से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी न किसी तरह से, इस तरह से नहीं तो उस तरह से, हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका मन केंद्रित करना, यह है सबसे ऊंची दया। इसलिए प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जिनको यह ज्ञान थोड़ा बहुत हो चुका है, भले वो बड़े बड़े पंडित ना हो, बड़े बड़े विद्वान ना हो, भले वो शुद्ध भक्त न हो, भले वो साधारण साधक हो जो कि साधना करके भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं अपने सीमाएं और बंधनों के साथ साथ, भले ऐसे भी भक्त क्यों न हो, लेकिन जहां तक हमें भगवान के बारे में ज्ञान है, हमें भक्ति की अनुभूति है, हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जो व्यक्ति धन को लेकर केवल अपने पास में रखता है और दूसरों को देता नहीं, वो क्या कहलाता है? कृपण या कंजूस कहलाता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है और भक्ति करता है, लेकिन केवल अपने आप के लिए भक्ति रखता है, दूसरों को बताता नहीं इसके बारे में, दूसरों को जाके प्रचार नहीं करता, तो वो भी प्रथम श्रेणी का भक्त नहीं कहलाता। लेकिन सबसे पहले हमारे विचार ठीक होने चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाती है, हम कौन हैं, ये तत्व ज्ञान धीरे धीरे से मालूम होना चाहिए, फिर सही विचार आते हैं। सही विचार आएंगे तो उन विचारों के आधार पर हमारा आचरण होना चाहिए, अर्थात सही आचार होना चाहिए। जब आचार सही ढंग से होगा उसके बाद में प्रचार हो सकता है। तो पहले विचार, फिर विचारों के आधार पर प्रचार आचार, और सही विचार और आचार के आधार पर प्रचार। तो ये हर एक भक्त का कर्तव्य रहता है कि जहां तक हो सके हम दूसरों के ऊपर करुणा दिखाएं, लेकिन सबसे पहले अपने आप के ऊपर करुणा दिखाना चाहिए, खुद हमें भक्ति में मजबूत होना चाहिए, हरि कृष्ण महामंत्र हरि नाम का उच्चारण अच्छे ढंग से करना चाहिए। ध्यान से, भगवान ने ये करुणा का यंत्र हमें दिया है जो है उनका नाम, और उस नाम का प्रयोग अपने आप के लिए नहीं करेंगे तो फिर अपने आप के ऊपर हम क्रूरता दिखा रहे हैं। जिस तरह से अपने आप के ऊपर भी आक्रमण करना या आत्महत्या का प्रयत्न करना, यह भी एक पाप माना जाता है, यहां तक कि देश के कानून से दृष्टि से भी यह एक गुनाह है। तो इसी तरह से जैसे कि अपने शरीर के ऊपर आक्रमण करना भी एक पाप है, अपने आत्मा के ऊपर आक्रमण करना भी पाप है। आत्मा के ऊपर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? जब हम भगवान के विस्मृति को बढ़ाने वाले कार्य करें, ऐसे कार्य करें जिससे कि हम भगवान को भूल जाएं, ये हमारे आत्मा के प्रति पाप है, आक्रमण है। इसलिए हमें चाहिए कि पहले अपने आप के ऊपर करुणा करें, आत्मा के ऊपर करुणा करें, खुद भक्ति मार्ग को अच्छे ढंग से स्वीकार करें और इस मार्ग में शक्तिशाली हो जाएं, और साथ साथ दूसरों को भी कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। यहां पृथ्वी महाराज बहुत सख्त बात बताते हैं। वो बताते हैं कि जो केवल अपने स्वार्थ की में रुचि रखता है, दूसरों के प्रति दया दिखाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखता, वो राजा के हाथों मारे जाने योग्य है। ये दंड है। देखिए, मतलब करुणा की भावना वैदिक सभ्यता में इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी कि जो स्वार्थी व्यक्ति था वो केवल इतना नीच माना जाता था कि राजा के ऊपर ये एक आदेश है शास्त्रों का कि ऐसे व्यक्ति की हत्या करो। देखिए, और ऐसी हत्या को वास्तव में हत्या नहीं कहलाया जाता था। अर्थात जो दूसरे मनुष्य की हत्या करने से पाप आता है, वो पाप राजा के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि उसने ऐसे एक पापी व्यक्ति की हत्या की है। जिस तरह से अगर कोई खूनी है और खूनी को मृत्यु दंड दिया जाता है, तो मृत्यु दंड देने वाले को सजा नहीं मिलती, लेकिन किसी साधारण मासूम आदमी को जाके उसकी हत्या करें तो फिर हमें दंड मिलेगा। लेकिन जो पापी है, जिसने खून किया है किसी का, अगर राजा उसको मृत्यु दंड दे तो राजा का कोई कसूर नहीं, हालांकि उसने उस व्यक्ति की हत्या की है, लेकिन हत्या का पाप जो है वो राजा के ऊपर नहीं आएगा। बल्कि जो राज ऐसे पापी की हत्या नहीं करेगा तो वो पाप कहलाता है। तो इस तरह से ऐसे कई कार्य हैं, ऐसे कई प्रकार के पाप हैं जिनका करने से व्यक्ति मारे जाने योग्य होता है राजा के हाथों में। और राजा अगर ऐसे व्यक्ति को मारे तो राजा के ऊपर कोई पाप नहीं आता है। तो पृथु महाराज स्पष्ट बता रहे हैं कि शास्त्रों का आदेश है कि जो व्यक्ति दयालु नहीं होता उसकी हत्या करनी चाहिए। पृथ्वी माता, तुमने क्रूरता दिखाई है, तुमने दया नहीं दिखाई प्रजा के ऊपर, इसलिए तुम्हारी हत्या करना मेरे लिए अनिवार्य है। शास्त्रों का आदेश है कि तुम्हारी हत्या मुझे करना चाहिए। और इस तरह से पृथ्वी माता आगे चल के क्या कहने वाली है वो हम देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी?
जैसे हम किसी को दया दिखाने के लिए कोई गलत काम के लिए दया नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन अगर घर में कोई पुरानी व्यक्ति है और उनको चाय की जरूरत है और हमारे भक्ति में बाधा आने के लिए हम उनकी सेवा कर सकते हैं उसके लिए या नहीं कर सकते, भक्ति में बाधा नहीं आए ऐसे?
हाँ, ऐसे संसार इतना सीधा साधा नहीं है। संसार में इतने सारे अवस्थाएं परिस्थितियां आती हैं जो कि इतनी सरल नहीं होती हैं, इसलिए हर प्रश्न का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दिया जा सकता। परिस्थिति को देखना पड़ता है, व्यक्ति को देखना पड़ता है, समय काल को देखना पड़ता है, देश काल पात्र के अनुसार उसका जवाब दिया जा सकता है। ऐसे ही जनरल दृष्टि से जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी जैसे चाय है वो भी एक नशे का पदार्थ है, इसलिए हम इसमें ज्यादा हम इसको लेते ही नहीं है, ना ही हम दूसरों को देते हैं। लेकिन फिर भी पाप के दृष्टि से ये कम पाप है, जैसे कोई मांसाहार है वो बहुत ज्यादा पाप है, चाय पीना पाप है लेकिन इतना नहीं है जितना कि मांसाहार करना। तो ये एक तुलना भी हमारे मन में रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि छोटा सा कुछ कार्य करके भौतिक सेवा भी भले वो क्यों ना हो, अगर हम किसी के हृदय को जीत सकते हैं और उसके हृदय को जीत कर हम उसे भगवान श्री कृष्ण के शरण में ला सकते हैं तो फिर क्यों ना करें ऐसा। क्योंकि आखिर हृदय के परिवर्तन से ही व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन सकता है, केवल बुद्धि से नहीं। ऐसा नहीं कि केवल हम वाद विवाद से तर्क वितर्क से उसको हराएं, उसके नास्तिकवाद के जो धारणाएं हैं उनको खत्म कर दें, काट दें और फिर भक्ति के सिद्धांत को उनके हृदय में स्थापित कर दें जबरदस्ती। ऐसे लोग नहीं आते भक्ति में, हालांकि वो जानते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं शायद वो सही गलत गलत है, लेकिन नहीं आएगा। जब तक कि उसके हृदय को आप नहीं जीत लेंगे तब तक आप भक्त नहीं बना पाएंगे। तो प्रचार का क्या मतलब है? केवल भाषण देना, लेक्चर देना नहीं है, केवल दर्शन के बारे में वाद विवाद करना ये नहीं है। केवल ये सब चीजें हो सकती हैं साथ साथ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ऐसे कोई कार्य करना जिनसे उनके ऊपर ऐसे करुणा दिखाना जिनसे जिसके फल स्वरूप वो भगवान के शरण में आने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो आपको अभी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस परिस्थिति में देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, देश के हुए हमें उचित कोई निर्णय जो है वो लेना चाहिए।
Dai vai si amora mamma che sa mia la hani da pane uche re di padagora Dori Sadhana, 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 sadh